महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम श्रुतात्मने नमो अरिहंतां, नमो सिद्धां, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसाहूं। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा जो अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है, उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 33 पर आ गए, 33। यहाँ अपनी काल प्ररूपणा शुरू हुई थी, अभी बहुत 15 दिन का गैप हुआ ना। देखो हम थोड़ा देख लेते हैं, काल प्ररूपणा 26 से शुरू हुआ, उसमें तो जघन्य और उत्कृष्ट दो भेद है। काल का अर्थ है क्या? उत्कृष्ट अनुभाग बंध का लगातार काल कितना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम। ऐसे ही जघन्य अनुभाग बंध का मिनिमम और मैक्सिमम काल कितना होगा, उसके बाद यहाँ पर बता रहे, पूछ रहे। ये तो एक जीव की अपेक्षा बता रहे। तो हमने यहाँ देखा था 26 पृष्ठ पर सेकंड लाइन में, ओघ से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना काल है, तो कहते हैं जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, क्योंकि लगातार उत्कृष्ट हो गए तो वही परिणाम अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम लगातार रहे तो 200 में लगे उत्कृष्ट के बाद। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव इसका उत्कृष्ट बंद करेगा, और वो भी उत्कृष्ट कभी कभी करेगा। अगर एकेंद्रियादि जीव तो एकेंद्रिय में तो अनुत्कृष्ट ही बंद होता रहेगा, इसलिए उसका लगातार काल अनंत काल बता। अब वेदिनी और नाम और गोत्र चार घाती की बात बता चुके। वेदिनी नाम गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि इसका उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ लिया था हमें याद है? हाँ, 10वें में, क्योंकि वहां उसकी शुभ प्रकृति है। अघाती में अशुभ प्रकृति है, संकलेश परिणाम से उत्कृष्ट बंध होता है, और एक इंद्र में अनुत्कृष्ट लिया। वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उनके प्रशस्त में होगा और वो क्षपक 10वें के अंत में होगा, और उसका एक समय के लिए होता है, क्योंकि हमने देखा था श्रेणी में या अन्यतर भी करण परिणामों में एक एक समय में एक एक अनुभाग बंध होता है। प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुणा प्रति समय होता है बढ़ता हुआ, और अप्रशस्त में अनंत गुणा घटता हुआ है, इसलिए एक समय लिया, दो समय नहीं लिए। अनुत्कृष्ट कैसे होगा उसका, जो उत्कृष्ट कब होता है तो क्षपक के अंत में, बाकी सारा अनुत्कृष्ट है तो अभव्य में अनादि अनंत होगा, क्षपक में पहुंचता है वो अनादि शांत होगा। सादि शांत कब होता है? बीच में रुक गया है, हुआ ही नहीं। अनुत्कृष्ट होते होते बीच में 11वें गुण स्थान में बंध नहीं था, फिर 10वें में आकर बंध शुरू हुआ, जो अनुत्कृष्ट में ही अंतर पड़ गया तो उसका काल सादी शांत हो जाता है, यानी उपशम श्रेणी से उतरते हुए अनुत्कृष्ट शुरू हुआ और फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़े, क्षपक श्रेणी चढ़े तो उसका अंत हो गया, इसलिए सादी शांत कह दिया। तो उसमें भी सादी शांत का जघन्य काल अंतर में, एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, दोबारा श्रेणी चढ़ी उसे, तो साधी शांत का अंतर्मूर्त होगा। ये ख्याल में आ रही बात, अनुत्कृष्ट की बात चल रही। और उसका उत्कृष्ट काल कितना है तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, पहली बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हैं और फिर लगातार अनुत्कृष्ट चल रहा है, अंत में जाके उन्होंने क्षपक श्रेणी चढ़ी। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। यह अनुभाग बंध की बात है, स्थिति बंध में ऐसा नहीं था, स्थिति बंध में लगातार घटता चला था। ये हम 26 से फिर दोबारा काल प्ररूपणा देख रहे हैं, थोड़ी रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। आयु के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि आयु का बंध ही अंतर्मूर्त तक होता है। ये तो हमने वहां देखा था। फिर उसके बाद हमने मार्गणाओं में देखना शुरू किया था, 27 पेज से मार्गणा चालू हुई थी। नारकियों में हमने देखा था उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, जैसे अन्यत्र देखा था सात कर्म। उत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट 33 समय, क्योंकि उसने उत्कृष्ट बंध ही नहीं किया। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में अपनी अपनी स्थिति को जानकर ले आना चाहिए। अब यहाँ तो वो क्षपक की बात घटित नहीं होती है, इसलिए सभी सात कर्मों पर ले लिया। तीर्यंचों में सात कर्मों का उत्कृष्ट बंग नारकियों के समान है। अब यहाँ अनुत्कृष्ट वहां तो उसकी नारकी की स्थिति ली थी, तीर्यंचों में तीर्यंचों की काय स्थिति लेना है, जो अनंत काल लेना। अब जो जो मार्गणा लेंगे हम, पंचेन्द्रिय त्रिक ले लिया तो उसकी जितनी उसके जितने पूर्व कोटियां हैं तीन पल्ले सहित वाली, वहां उसको ले लेना। अब मनुष्य में देखते हैं, 27 पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मनुष्य त्रिक में वेदनीय नाम गोत्र के लिए एक समय लेना है, क्षपक में। देवों में सात कर्मों का उत्कृष्ण भाग बंध का काल नारकी उनके समान, यानी एक या दो समय होगा। अनुत्कृष्ट का उनकी जो अपनी अपनी स्थिति है देवों की, उसको लेना। उसके पश्चात एक इंद्रियों में तो सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट दो समय। अनुत्कृष्ट का यहाँ विशेषता है, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल यानी सूक्ष्म में रहने का काल उन्होंने लिया था। एक इंद्रिय में भले वो अनंत काल रहता है, परंतु सूक्ष्म में रहा तब तक अनुत्कृष्ट ही किया, बादर में आने पर फिर उत्कृष्ट कर लिया। फिर हम देते द्विंद्रिय आदि 29 पेज पर, तो उसका भी उत्कृष्ट का एक या दो समय होता है। अनुत्कृष्ट का जब देखना है तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट उसकी काय स्थिति, तो विकलेन्द्रिय में संख्या 1000 वर्षों की होती है। ऐसे अनुत्कृष्ट में वो काय स्थिति या अन्य अन्य वो बात ले लेना। अब आते हैं हम योगी मनोयोगी वचन योगी में क्या लेना है। योग का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए वहां उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होगा, उत्कृष्ट काल। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होगा। क्योंकि बादर एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल है।
ओग में तो पंचेन्द्रिय की अपेक्षा होता है।
नहीं, ओग में तो ऐसा लेना है कि वो ओग में उत्कृष्ट बंध कौन करता है, तो पंचेन्द्रिय करता है, इसलिए एक इंद्रिय में लगातार अनुत्कृष्ट ही किया उसने। लगातार कितने काल तक करता है उसको लेना है। کہاں پر ویدنی کا لیا ہوگا؟ ویدنی نام گوتر کا چار گھاتی کرموں کا تو اسنکھیت پتگل پراورتن ویدنی نام گوتر کا ایکندری میں کس وہاں ویدنی نام گوتر کا اس لیے لیا ہے چار گھاتیوں کا تو اسنکھیت پتگل پراورتن لیا ہاں آپ کا ایسا پرشن ہے وہاں اوگ میں انوتکرشٹ کا لگاتار کال اسنکھیات پتگل پراورتن لیا وہاں کمپیریزن کس کی تھی ایک اندریہ سے پنچ اندریہ تک کے سبھی جو اس میں انکلوڈ ہوا ان میں سے اتکرشٹ کون کرے گا تو سنگی پنچ اندریہ متھیا درشٹی سنکلیش والا ایک اندریہ میں اتکرشٹ کون کرے گا ابھی ایک اندریہ میں ہی ہوتا رہتا ہے اس میں بھی اتکرشٹ انوتکرشٹ ہوتے رہیں گے تو ایک اندریہ میں تو بادل جیو کرے گا تو بھلے ایک اندریہ میں انت کال کیوں نہ رہے بادر جیو کبھی کبھی اس کو اتکرشٹ بند کرے گا تو لگاتار انوتکرشٹ کہاں جب وہ سوکشم میں گئے تو لگاتار انوتکرشٹ جیسے ایک اندریہ سے پنچ اندریہ سبھی جیو لینے پر انوتکرشٹ کے لیے لگاتار کہاں بھیجا ایک اندریہ میں ایسے ابھی ایک اندریہ میں ہم دیکھ رہے ایک اندریہ میں انوتکرشٹ کے لیے سوکشم میں بھیج دے گا کس کا نتیہ نگود لے لو ابھویہ لے لو یا جو بھویہ ہے جو کبھی کشپک شرینی نہیں چڑھے گا اس کی بات ہے ویدنی نام گوتر کی بات چل رہی ہے چار گھاتی میں چار گھاتی میں آپ کو ایک اندریہ میں لگانا ہے کہ کس میں لگانا ہے جب اوگ اوگ کہتے تو نتیہ نگود کا پرشن نہیں نکالنا ہے جب اوگ میں کہہ دیا تو سب میں جو لاگو ہوگا وہ بات گھٹت کریں گے انادی انت ابھی ہم نے ابھویہ میں بھی لے لیا نتیہ نگود الگ سے کیوں سوچ رہے آپ اس کو اوگ کی اپیکشا انادی انت ایک وکلپ ہے ابھی اس میں ابھویہ میں لگے گا یا ابھویہ سمبھویہ میں لگے گا جو جو کشپک شرینی نہیں چڑھیں گے ان سب میں لگے گا یہ ہم کہاں آئے تھے ایک اندری کی بات ہم نے پڑھی تھی پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ خیال میں ہے نا ایک اندری کی بات ایک اندریوں میں اتکرشٹ بند کون کرتا ہے تو بادر کرتا ہے تو لگاتار انوتکرشٹ کون کرے گا تو لمبے کال تک جو سوکشم میں رہا اس کو وہ تو اسنکھیات لوگ ہو گئے ہاں منویگی تک آئے تھے آپ نے پرشن پوچھا اس لیے پھر واپس گئے اب بادر ایک اندری اتکرشٹ کرتے ہیں تو بادر ایک اندریوں میں رہنے والے کے انوتکرشٹ کا اتکرشٹ کال کتنا ہوگا انگول کا سنکھیا وہ بادر ایک اندریوں میں رہنے کا اتکرشٹ کال منویگی وچن یوگی میں دیکھ رہے تھے ہم منویگی وچن یوگی کا تو انترمورت کال ہے تو اتکرشٹ کا لگاتار کال ہے ایک سمے یا دو سمے انوتکرشٹ کے لیے کیا ایک سمے یا ادھک سے ادھک انترمورت ویدنی نام گوتر کے اتکرشٹ ایک سمے ہی ہوتا ہے اور وہ بھی کب ہوتا ہے تو دسویں کے انتر میں ہوتا ہے تو کشپک شرینی میں جس یوگ سے وہ دسویں سے بارہویں میں جاتا ہے وہ اس کے انتر میں اس کو لے لینا سب میں گھٹت ہوتا انوتکرشٹ کا کتنا ہوگا منو یوگی تو انتر میں اب کا یوگی میں لکھنا ہے کا یوگی میں اتکرشٹ کا تو ایک یا دو سمے انوتکرشٹ کا کا یوگ کے رہتے ہوئے انوتکرشٹ کا اتکرشٹ کال یعنی لگاتار ایک اندریہ میں رہیں گے تو کا یوگ قائم رہا تو انت کال ویدنی نام گوتر کا کہاں ہوتا ہے تو دسویں میں ہوتا ہے تو ایک سمے کے لیے ہوتا ہے اور انوتکرشٹ हाँ एक इंद्रिय में रखना उसको, क्योंकि पंचेंद्रिय में आएगा तो काय योग से वचन योग मनोयोग होगा, इसलिए उसको नहीं ले सकते। अब केवल औदारिक कायोग में 29 पर पढ़ रहे हैं, नीचे से तीसरा पढ़ रहे हैं, तीसरी लाइन औदारिक कायोग में मिला 29 पेज नीचे से तीसरी लाइन औदारिक कायोग। तो उत्कृष्टता को एक समय दो समय तो होते ही है, अनुत्कृष्ट का कितना है तो कुछ कम 22,000 वर्ष, क्योंकि कायोग लगातार औदारिक कायोग लगातार चालू रहे तो वो तो पृथ्वी का एक में होता है। वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट का तो एक समय शपक श्रेणी में 10वें में होता है, अनुत्कृष्ट का कितना होगा वही कुछ कम 22,000 वर्ष। और औदारिक मिश्र में हम 30 पेज पर आए, औदारिक मिश्र में सातों कर्मों को लिया, उत्कृष्ट अनुभाग बंध जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, यहाँ दो समय नहीं लिए क्योंकि जो नेक्स्ट समय में पर्याप्ति पूर्ण करेगा ऐसा जीव लिया, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने वाला। अभी अनुत्कृष्ट का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अनुत्कृष्ट का एक समय क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब तक अंतिम समय में वो पूर्ण करेगा तो लास्ट समय में हो गया ना उसको, तो उसके पहले वो लगातार अनुत्कृष्ट ही करता है, एक समय नहीं होगा अनुत्कृष्ट का, अंतर्मूर्त होगा। अब वैक्रियक मिश्र का योग्य आहारक मिश्र में भी ऐसा ही है कि जो नेक्स्ट समय में पर्याप्त होगा ऐसे जीव को उत्कृष्ट हो सकता है और उसके पहले अनुत्कृष्ट। आहारक मिश्र का योगी जो में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल भी एक समय है, क्योंकि वहां पर एक समय पहले लेना है ना उसको, उनका उत्कृष्ट बंध का होता है पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले, तो वहीं पर उसने आयु का बंध उत्कृष्ट किया है तो एक समय ले लेना। नीचे आते हैं देखो, दो पैराग्राफ नीचे, वैक्रियक का योगी और आहारक का योगी आठों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट दो समय। अब अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। ये अंतर्मूर्त क्यों कहा नितिन भाई? क्या कहते हैं ये अंतर्मूर्त क्यों कहा? अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा? हाँ, अनुत् क्या वो योग अंतर्मूर्त तक रहता है, उत्कृष्ट तो दो ही समय तक होता है, परंतु आहार का योग कहो या वैक्रिय का योग अंतर्मूर्त तक ही रहेगा। ये मार्गणा जो है वो अंतर्मूर्त की है, क्योंकि वो मनोयोग वचन योग पलटते रहता है वहां पर, इसलिए अंतर्मूर्त लिया। कारमान का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल तीन समय। मैंने वो उत्कृष्ट किया ही नहीं, वो लगातार अनुत्कृष्ट ही है। उसमें भी हमने देखा था कि जो कर्मण का योग का काल कितना है तो तीन समय का, और उसमें उत्कृष्ट अनुभाग बंद कब होगा तो तीसरे समय में, अंतिम समय। उसके बाद हम वेद मार्गणा को देख रहे हैं, तीस ये विशेष अर्थ में लिया। हाँ, परंतु वो अंतिम उत्कृष्ट काल तीन समय है, सात कर्मों का उत्कृष्ट अनुभव अंतिम समय में होता है। यह उन्होंने अंतिम समय में वो दो वाक्य अलग अलग लेना,
तीसरे समय
हाँ पंचेंद्रिय में ही होगा उत्कृष्ट, और वो तो दो समय वाला ही होता है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय का कर्मण का योग दो समय के लिए होता है, तो दूसरे समय में कहेंगे। यहाँ विशेषार्थ में उन्होंने अंतिम समय लिखा है, परंतु उत्कृष्ट बंध तो पंचेंद्रिय के होगा। इसलिए दूसरे समय में कहेंगे। अब नीचे का पैराग्राफ ये फिर दोबारा इसलिए ले रहे कि भूल गए ना हम सब, जो डायरेक्ट पढ़ना चालू किए तो कंफ्यूजन होगा अपना। स्त्री वेदी में, अब स्त्री वेदी कहने से नौवे गुणस्थान का स्त्री वेद का भाग है वहां तक लेना। अब चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट तो संगी पंचेंद्रिय वो तो मिथ्या दृष्टि जो है एक समय दो समय, अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट में स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल लेना। तो सौ पल्ल्य पृथक पल्ल्य, वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट एक समय है। ये उत्कृष्ट एक समय कब लेना? शपक में स्त्री वेद के उदय का अंतिम समय वहां लेना। और शरीर में हमने देखा प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है, कोई भी अनुभाग बंध की अपेक्षा वही का वही परिणाम नहीं रहता है, अनुभाग बंध बढ़ता चला। यहाँ तो वेदिनी नाम गोत्र प्रशस्त प्रकृति है, वो अनंत गुना बढ़ेगी, इसलिए एक समय लिया। स्थिति बंध में हम अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में स्थिति बंध बढ़ता है, अनुभाग बंध प्रति समय बढ़ता है प्रशस्त में, और अप्रशस्त में प्रति समय अनंत गुना घटता है। ये स्थिति बंध प्रति समय कहाँ पर बढ़ता है? जैसे स्थिति बंध नहीं, स्थिति कांड बंध भी नहीं कहेंगे, स्थिति कांड घात होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है। तो एक एक समय में कब होता है कांड घात? वो अनुसमय परतन तो अनुभाग में होता है। मैं कांड घात की बात, स्थिति कांड घात और अनुसमय अपवर्तन तो अनुभाग कांडक जो होता है वो अंतर्मूर्त में होता है तो हम कांडक घात कहते हैं, और अनुसमय अपवर्तन वो तो दसवें में होता है।
प्रति समय बढ़ना,
प्रति समय स्थिति कांडक घात होना, बढ़ने की बात की, स्थिति कांडकों में घटती है। स्थिति कांडक घात तो अंतर्मूर्त का होता है ना, तो एक समय वाला कब होता है? एक समय में असंख्यात वर्षों की स्थिति घटना, ये कहाँ होता है? समुद्घात में चार समय, समुद्घात केवली समुद्घात वो तो वो उसके लिए भी एक अंतर्मूर्त लगता है। पहला स्थिति कांड घात अनिवृत्तिकरण में जो होता है, ये जो समय को प्राप्त करने के समय में प्रायगलब्धि में ही होता है, अनिवृत्तिकरण में भी नहीं। प्रायगलब्धि में एक ही स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होता है, परंतु उसको भी अंतर्मूर्त लगता है। परंतु यहाँ जब केवली समुद्घात होता है तो दंड कपाट प्रतर और लोकपुर चार समय तक, एक एक समय में एक एक स्थिति कांडक घात होता है, वो भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कांडक का प्रमाण है। क्योंकि वेदिनी नाम और गोत्र की स्थिति पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है वहां पर, तो चार समय में चार स्थिति कांड घात करता है, बाद में अंतर्मूर्त वाले करता है। अब यहाँ क्या बात, यहाँ अपने अनुभव की बात चल रही है। ये वेदिनी नाम और गोत्र का उत्कृष्ट हमने देखा क्षपक के स्त्री वेद के अंतिम समय में, और वेदिनी नाम गोत्र का अनुत्कृष्ट कितने काल तक चलेगा? लंबा, एक समय से लेकर लंबा मैक्सिमम। अनुत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल, अनुत्कृष्ट श्री वेदी जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र सौ पल्ल्य पृथक, स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट लेना उसका काल, काय स्थिति लेनी। पुरुष वेद में क्या कहेंगे हम?
सौ
सागर वो अनुत्कृष्ट में वहां हम शादी शांत वाला वो विकल्प वहां हो सकेगा पुरुष वेदी में। देखिए उपशम श्रेणी उतरते हुए पुरुष वेदी हुआ, अनुत्कृष्ट अनुभव कर रहा है और फिर वो शपक श्रेणी चल तो अंतर्मुख हुआ उसका। अनुत्कृष्ट के उत्कृष्ट काल के लिए क्या करना है? पुरुष वेद में लगातार रहना है। तो सौ सागर पुत्र नपुसक वेदी जीव में काय योगी जीव के समान है, क्योंकि उनको एक इंद्रिय में रखना तो लगातार नपुसक वेद सहित वो एक इंद्रिय में रहा तो उत्कृष्ट बंध नहीं किया अनुत्कृष्ट का। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो तो अपगत वेदी में सातों ही कर्मों का उत्कृष्ट अनुभव बंध है। अभी साथ में कैसे डिवाइड करेंगे अश्विन भाई? हाँ शपक में और बाकी यानी क्या क्या?
हाँ
उसका अंतिम समय लेना, उपशम श्रेणी उतर कर अंतिम समय यानी सवेद होने के पूर्व में। अब अनुत्कृष्ट अनुभव बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है, क्योंकि एक समय कैसे अपगत वेदी हुआ और एक समय में मरा तो अपगत वेद का एक समय घटित हो सकता है। उत्कृष्ट काल हो गया ना वो तो, हाँ अंतर्मूर्त होगा। अनुत्कृष्ट बंध का उत्कृष्ट काल, क्योंकि अपगत वेद अवस्था में रहने का काल लेना है वहां पर। अपगत वेद में अनुत्कृष्ट बंध करने का काल लेना है, उतरते समय लेना पड़ेगा ना। अपगत में उतरते हुए लगातार अनुत्कृष्ट बंद हो रहा है। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयोजियों के छह कर्मों का काल, छह कर्मों का क्यों कहा वहां पर? अवगत में सात कर्म लिए, सूक्ष्म में मोह का बंधन नहीं हो पाया इसलिए छह कर्म लिए। अब फिर क्रोधादि चार कषाय में उक्ष कषाय का काल एक अंतर्मूर्त है वो लेना वहां पर, और क्रोधादि में वेदिनी नाम गोत्र का कहां पर लेंगे? उत्कृष्ट अनुभाग बंद। हाँ लक्ष्मी क्रोधादि में ने क्रोध वाले मान वाले माया वाले लोभ वाले, हाँ जब जब उसका उदय का अंतिम समय है तब लेना शपक श्रेणी में। लोभ के लिए तो दसवें के अंत में लेना, क्रोध मान माया के लिए नौवे में उसका जो अंतिम समय है उसके कषाय का तब लेना। अब 31 पेज पर नीचे के पैराग्राफ विभंग ज्ञानी, अभी उसके उत्कृष्ट अनुभव बंध, अभी विभंग ज्ञानी है तो संगी पंचेंद्रिय है जी मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट कभी कभी होता है तो एक समय या दो समय। अनुत्कृष्ट का कैसे लेना? जगन्य का एक समय और वहां नरक में ले लेना कुछ कम 33 लेना, कुछ कम इसलिए लेना कि पर्याप्त होने पर उसको विभंग ज्ञान होगा इसलिए विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल लगाता है कुछ कम 33 सब। वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभव बंद कब होगा? विभंग ज्ञानी में याद है कभी, हाँ संयम के अभिमुख तो वहां पर भी एक समय वाला लेना क्योंकि संयम के अभिमुख वाला है यानी अंतिम समय तक विभंग ज्ञान है करण लब्धि के अंत में, और हमने देखा वो तो पहले से उसका प्रति समय अनुभाग बंद वेदिनी नाम में बढ़ते चला जाएगा प्रशस्त प्रकृति है। वेदिनी नाम गोत्र और अनुत्कृष्ट का एक समय से लेकर अभी वो विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल ले लिया कुछ कम के समय। वो 32 पेज पर आ गए। ऐसे एक समय जो लिया था ना अनुत्कृष्ट का, वैसे विभंग ज्ञान का भी जगन्य काल एक समय हो सकता है। मनुष्य तीन इंचों में हो सकता है। अब समय दृष्टि की बात लेंगे। 32 पेज पर आदि निबोधि क्षुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीव सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब यहाँ दो समय नहीं लिए क्योंकि चार घाती में कब होगा मिथ्या तो के अभिमुख वाला लिए। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जगन्य काल अंतर्मुख ये समय तो में रहने का उत्कृष्ट काल साधिक 66 साल। और वेदक समय दृष्टि होगा तो पूरा 66 साल। सामान्य से समय दृष्टि कहेंगे तो साधिक 66 साल। ये समझ में है ना। यह सात कर्मों के इकट्ठा लिखा है परंतु चार घाती तो मिथ्यात्व के अभिमुख वाले उत्कृष्ट बनेंगे। वेदिनी नाम गोत्र कहाँ उत्कृष्ट बनेंगे? दसवें के अंत में क्षपक वाले के, क्योंकि मार्गण अपने क्या है अभिनिबोधि क्षुत अवधि ज्ञानी वो तो वहां पर भी संभव। अब मन परे ज्ञानी उसी 32 पेज पर नीचे यहाँ पर भी सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय, क्योंकि अभी ये कब लेना है असंयम के अभिमुख वाला चार घाती कर्मों का लेना और तीन कर्मों का क्षपक में लेना है। अनुत्कृष्ट के लिए भी एक समय लिया। अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे हुआ? उपशम श्रेणी उतरते हुए एक समय के लिए यानी मनपरे ज्ञानी सहित अनुत्कृष्ट का बंद हुआ और मरकर देव हुआ तो मनपरे ज्ञान नहीं रहा। ख्याल में ये बात ये और अनुत्कृष्ट में ये रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? कुछ कम एक पूर्व कोटि, यानी पूरा मनपरे ज्ञान का उत्कृष्ट काल लेना है। अब यही बात संयत में सामयिक संयत चतुपस्थापनी घटित है। परिहार विशुद्धि में भी ऐसा ही लेना है कि वहां पर अनुत्कृष्ट का जगन अंतर्मूर्त लेना। अभी आगे आते हैं 33 पेज पर, यहां से अपना विषय आज का प्रारंभ होता है। एक या दो समय देखो पढ़ लेते। देखो 32 पेज पर परिहार विशुद्धि संयम वो मन परिज्ञानी वाले पैराग्राफ में चौथी लाइन मिली, नीचे से छठी लाइन टोटल, उनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सात कर्मों में अभी उसमें से चार अलग निकालना, तो परिहार विशुद्धि में जब उत्कृष्ट बंध कब होगा? जब संकलेश ज्यादा हो, यानी वो कब? सामायिक छेदों को स्थापना के सन्मुख वाला जीव रहना। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि परिहार विशुद्धि में रहने का मिनिमम काल अंतर मिलते इसलिए, और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है, कुछ कम में 38 वर्ष माइनस करना है। अभी उन्हीं में परिहार विशुद्धि में वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल दो समय लिखे, क्योंकि वो तो उसका स्वस्था नहीं ना, कहीं पर भी सन्मुख वाला परिणाम नहीं लेना है किसी के, यानी वहां कोई करण परिणाम नहीं है, इसलिए वो एक समय वाली बात यहाँ नहीं ली, दो समय वाली ली। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है ना, पूर्व कोटि माइनस 38 वर्ष। अभी हम लेशा की बात देखें, पांच लेशा वाले जीवों में मेरे ख्याल से शुक्ल लेशा अलग निकाले, क्योंकि शपक में उसके वो कुछ घटित हो गए। हाँ, तो पांच लेशा वाले जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागर, साधिक 17 सागर, साधिक 7 सागर यानी कृष्ण नील कपूर, साधिक 2 सागर पित्त और साधिक 18 सागर पद्म। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्म लेशा वाले जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के विषय में यदि दर्शन मुनि का क्षपक जीव है तो स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्योंकि दर्शन मुनि का क्षपक है, वहां करण परिणाम चल रहा है, तो करण परिणाम में एक एक समय में अनुभाग बंध यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा बढ़ता हुआ होगा, इसलिए एक समय के लिए उत्कृष्ट होगा। तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल काय स्थिति प्रमाण है। काय स्थिति यानी उस लेशा की स्थिति। ये बात उन्होंने परिहार विशुद्धि में भी बताई। देखो ये परिहार विशुद्धि का विशेषार्थ पढ़ लेते हैं, कल जो पढ़े नहीं, 32 पेज पर लास्ट लाइन विशेषार्थ हुआ, विशेषार्थ। देखो वहां पर भी दो प्रकार से लिया अथवा कहकर, वहां भी दर्शन मौखिक क्षपणा करने वाले की बात ली है। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल दो प्रकार से बतलाया है। प्रथम तो चार घाती कर्मों के समान ही इनका काल है, फिर प्रकारांतर से इनका दूसरा काल, चार घाती के समान यानी एक समय दो समय। इस भेद का कारण क्या है विचारणीय है। विदित होता है कि सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध मानने पर इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता है, और दर्शन मोह की क्षपणा वाले सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध माना जाता है तब इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध होता है। यानी अगर वहां दर्शन मोह की क्षपणा कर रहा हो उस काल में तो की बात है। ये अपना विशेषार्थ हमने लेशा वाला भी पढ़ रहा, शुक्ल लेशा वाले, लेशा वाले हुआ, लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। ये शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट काल लेना,
चार घाती कर्मों का शुक्ल लेशा
सन्मुख क्यों लेना, मिथ्या दृष्टि को ही ले लो ना। शुक्ल लेशा अपना क्राइटेरिया है, वो तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है। हाँ भले वो अंत कोड़ा कोड़ी क्यों न बांधे, परंतु तो उसके लिए उत्कृष्ट है। चार घाती में तो उसी को लेना है, अनुत्कृष्ट के लिए बाकी सारे शुक्ल लेशा वाले ले लेना। तो उसमें एक समय किस अपेक्षा से, किसी ने उत्कृष्ट बंद किया, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, लेशा पलट गया, ऐसा भी होगा। और उसी लेशा में लगातार रहने का काल है साधिक तैतीस साल, तो ये भी ले सकते। तो 33 सागर के देव में जाने के पहले और बाद में अंतर्मूर्त तक शुक्ल लेशा रहेगी, और वहां उसने अनुत्कृष्ट बंद किया है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, एक शपक में लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर। ये जहाँ लेशा पलटती उसकी अपेक्षा से अंतर्मूर्त लिया, क्योंकि वेदी ने नाम गोत्र का अनुत्कृष्ट है, यानी श्रेणी में चढ़ा तब शुक्ल लेशा शुरू हुआ, तब उसका अनुत्कृष्ट हो रहा था, और जब वो दसवें के अंत में गया तो उत्कृष्ट हुआ, या उपशम श्रेणी में बंद ही रुक गया उस अपेक्षा से। मैं तो अनुत्कृष्ट का जघन्य काल घटित करना है ना, तो अंतर्मूर्त घटित करना है, तो कैसे करना कि लेशा पलटकर वो शुक्ल लेशा वाला हुआ श्रेणी में चढ़ने के पहले। हाँ। वहां तो लेशा नहीं पलटेगी और वो 11 गुणस्थान में बंद रुक गया, वो काल ले सकते हैं उसको अंतर्मूर्त वाला। परंतु वो काल बड़ा होगा कि ये काल कौन सा छोटा होगा, श्रेणी का काल छोटा होगा ना,
छोटा होगा श्रेणी का, छोटा होगा
यानी उनका काल रेगुलर भी उसका काल छोटा हो सकता है। यानी वो तो लेशा का मिनिमम काल लेना है बस इतना ही। शायिक समय दृष्टि जीवों में शुक्ल लेशा वाले जीवों के समान भंग है। विशेषार्थ शुक्ल लेशा में वेदिनी नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद शपक श्रेणी में उपलब्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है, यह स्पष्ट ही है। कारण कि शुक्ल लेशा का यही काल है, यानी शुक्ल लेशा का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर। इतने काल तक इसके निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता रहता है, शेष कथन सुगम। अब क्षायिक समय दृष्टि जीवों में, हाँ यहाँ पर भी लिखा है, वो 96वें पैराग्राफ में लिखा है, क्षायिक समय दृष्टि जीवन शुक्ल लेशा वाले जीवों के समान भंग है। एक्चुअली वो नए पैराग्राफ में ही चाहिए था, क्योंकि ये सम्यक तो मार्गणा की बात बता रहे हैं, यानी ऊपर के पैराग्राफ में शुक्ल लेशा वाले पैराग्राफ में उन्होंने डाला है ना, ये लाइन डबल हुआ है। हाँ वही लाइन यहाँ है, सही समय दृष्टि जीवों में शुक्ल लेशा वाले जीवों के समान बन गए। प्राकृत में तो इसे आगे लिखा है ना, खईग सुख कलेशो भंगो, वही तो, इसीलिए 96 वाली लाइन काट देना, 97 में रखना। अब हम 34 पेज पर आ गए। शायिक सम्य दृष्टि जीवों में शुक्ल लेशा वाले जीवों के समान भंग है। अब शायिक सम्य दृष्टि में चार घाती का कब कहेंगे? उत्कृष्ट चौथे के सम्मुख, क्यों चौथे वाला करेगा ना उत्कृष्ट? मिथ्या तो भी कैसे क्षायिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि रेगुलर संकलेश वाला क्षायिक समय दृष्टि है तो अति संकलेश परिणाम में करेगा वो असंयत में। हाँ, तो उसके दो समय भी घटित हो गए क्षायिक समय दृष्टि है। सामान्य समय दृष्टि को हम कहेंगे मिथ्यात्व के सन्मुख वाले जीव को होता है, इसलिए उसका एक समय अंतिम समय घटित होगा। अब इनमें तो क्षायिक समय दृष्टि है तो चौथे गुणस्थान में जब उसके संकलेश ज्यादा है तब हम कहेंगे उसका बंध ज्यादा है, तो उसके लिए एक समय से दो समय भी घटित हो गए। उसके एक समय वाली बात कब घटित होगी? ये घाती में तो नीचे के गुणस्थानों के समय, परंतु वो यहाँ नहीं रहेगा। उपशम समय दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। सात कर्मों में फिर उल्टा पुल्टा लेना, चार घाती कर्म तो मिथ्या तो के सन्मुख वाले उपशम समय कर्म, और वेदिनी नाम गोत्र उपशम श्रेणी में दसवें के अंतर। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
चार घाती कर्म का उपशम श्रेणी उपशम समय दृष्टि में प्रथम उपशम
है। हाँ, चौथा गुणस्थान वाला है। अनुत्कृष्ट की बात ख्याल में, अनुत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उपशम सम्यक का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्ति होता है। इसलिए इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में जानना चाहिए, सम्यक मिथ्या दृष्टि के भी मिथ्यात्व के सन्मुख है तो उसका उत्कृष्ट वो चार घाती का होगा, और सातों कर्मों का लेना क्या उसको चौथे के सन्मुख वेदिनी नाम गोत्र का लेना। साधन समय दृष्टि जीव में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह होगी। अनुत्कृष्ट के लिए उसका साधन का काल लेना, इतनी विशेषता है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल एक समय है, ये मिथ्यात्व के अभिमुख वाला लेना। ऊपर जो लिखा था ना सात काल उत्कृष्ट काल दो समय है, उसके लिए विशेषता लेना। फिर इसका विशेषांक पढ़ते देखो। इसकी बात चल रही है साधन की।
हाँ, साधन ना वेदिया नाम उत्कृष्ट समय से भ्रष्ट होकर पहले समय में हो जाएगी कि कभी भी उत्कृष्ट में काम
अभी वहाँ उत्कृष्ट अनुभव बंद में वहाँ कौन सा प्रशस्त वाला ही लेना था, कौन सी प्रकृति लेना वहाँ?
हाँ,
दोनों ही हो गए ना, दो समय भी हो गए उनके। स्वामी देख लो, शासदल में स्वामित्व, वो दो समय होता है, इतना ही लिखा है वहां पर। चौबीस पेज पर है क्या वो? कौन सा स्वामित्व है? जगन्य के उत्कृष्ट का, जगन्य का है वो, उत्कृष्ट का उसके पूर्व में होगा। सोलह में मिला शासादन, सत्रह पेज पर है। चार घाती का तो विख्यात के अभिमुख, वेदीय नाम गोत्र का साकार जागरूक, साकार जागृत और सर्व विशुद्ध। वहां कोई ऐसा नियम नहीं ले लिया उन्होंने कि पहले समय में होता है ऐसा कुछ। अब यहां हम आए 34 पेज पर, विशेषात पढ़ेंगे। उनका कहना था पहले समय में होता है क्या, परंतु ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई उन्होंने। देखो विशेषात, उपशम सम्यक्त में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख जीव के, ये तो उपशम सम्यक्त के लिए। और अभी हम चर्चा शासादन की करें, अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है। तथा वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के समय होता है। इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, जगन्य और उत्कृष्ट का लेख समय। अब यहाँ वेदिनी नाम गोत्र का उन्होंने
अंतिम समय,
हाँ, परंतु वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो तो हमें समझना है। द्वितीय उपशम का दसवां गुणस्थान है। दसवें गुणस्थान के अंत में कल में यही बात है वेदिनी नाम गोत्र की। उपशम समय तो में उत्कृष्ट कब होगा? चार घाती कर्मों का तो अभी वो उपशम समय तो छूटकर मिथ्यात्व में जाने वाला लिया। वेदिनी नाम गोत्र का उपशम सम्यक्त्व में कब लेना? द्वितीय उपशम सहित उपशम श्रेणी चढ़ गया है, उसके दसवें के अंत में लेना। इसलिए सात कर कथन एकष्ठा लिया उन्होंने। क्या लिया? उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, जगन्य और उत्कृष्ट का लेख समय, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का, जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त का है। जब तक उत्कृष्ट नहीं होता, उत्कृष्ट दोनों में अंतिम समय में लिया है उसके, तो इसके पहले अनुत्कृष्ट था। यह प्ररूपणा समय मिथ्या विषय जीवों के इसी प्रकार घटित हो जाती है, इसलिए उसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल उपशम समय दृष्टि जीवों के समान कहा। हाँ, स्वामित्व की अपेक्षा नहीं, यहाँ काल की अपेक्षा। हाँ, एक समय और दो समय भी कहा उन्होंने। यहाँ लिखा ना ऊपर, इसी प्रकार समय मिथ्या ऋषि जीवों में जानना चाहिए, ऊपर के पैराग्राफ में उनमें यही बात घटित होगी कि वो सात कर्मों का उनका जो उत्कृष्ट अनुभाग का, जगन्य उत्कृष्ट काल एक ही समय होगा, उसमें भी चार घाती का मिथ्यात्व के सन्मुख वाले लेना, वेदिनी नाम गोत्र का सम्यक्त्व के सन्मुख वाले लेना। अभी शासादन की बात, शासादन समय दृष्टि जीव के चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, मिथ्यात्व के अभिमुख अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंद के समय होता है और वेदिनी नाम व गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद सर्व विशुद्ध जीव के होता है। केवल सर्व विशुद्ध इतना ही कहा। वहाँ तो संकलेश ज्यादा होगा तथा सासाधन सम्यक्त्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह अवधि है, इसलिए इसमें चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह अवधि का तथा वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसका अर्थ क्या है? आते ही समय में नहीं घटित करना है, कभी भी हो सकता है और कोई भी एक परिणाम लगातार दो समय तक हो सकता है अनुभाग बंद की अपेक्षा। यहाँ लिखा ना वेदिनी नाम गोत्र का जघन्य एक समय उत्कृष्ट दो समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय, ये सासाधन का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल छह अवली कहा सासाधन का उत्कृष्ट काल। यानी एक समय के लिए आने वाला अनुत्कृष्ट भी होगा, वहां कोई उसको उत्कृष्ट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक समय में के बाद मिथ्यात्व में जाने वाला है। मिथ्यात्व में जाने वाले हरेक के परिणाम समान हो कोई बात नहीं है। अब संगी जीवों में, संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी जीवों में पुरुष वेदी जीवों के समान बन गए, क्योंकि उत्कृष्ट करने वाले तो संगी ही है, तो उनमें यह बात घटित होती है। आहार जीवों में, अभी संगी जीवों में पुरुष वेदी का नाम क्यों लिया फिर उन्होंने? शपक की अपेक्षा पुरुष वेद थोड़े ही समान है, अनुत्कृष्ट के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा पुरुष वेद को लेगा। संगी में रहने का उत्कृष्ट काल स्वसागर को देगा। आहार जीव में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का काल बादर एकेंद्रियों के समान है, यानी क्या अंगुल का संख्या था, क्योंकि ये लगातार आहारक रहने का काल है। अनाहारक जीवों में कार्मण कायोगी जीवों के समान बन गए हैं, ये तो हमने देखा था, उसका उत्कृष्ट तो अंतिम समय में होता है। विशेष अर्थ, आहारक जीवों का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। बादर एकेंद्रियों की काय स्थिति भी इतनी ही है, इसलिए आहार जीवों में अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल बादर एकेंद्रियों के समान कहा है। शेष कथन सुगम है, यानी उनको अंगुल का असंख्यात भाग कहना था, उसके बदले बादर एकेंद्रिय के समान कह दिया। उत्कृष्ट काल का अर्थ होता है उत्कृष्ट अनुभाग बंध का लगातार काल, उसकी बात हमने देख ली। अब हमें जघन्य की सोचनी है। अब जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब चार घाती कर्मों का हम उत्कृष्ट बंध संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को लेते हैं। चार घाती का जघन्य कहाँ होगा? हाँ, शपथ श्रेणी में जहाँ बंध विच्छित्ति होती वहां लेना, वहां गोत्र तो हमने उल्टा सुल्टा लिया था। तो यहाँ कहते चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब गोत्र कर्म में कहाँ लेना है? सातवें नरक में। यानी वहाँ नीच गोत्र की बंद उच्छित्ति होगी ना, तो सम्यक्तो के सम्मुख वाला लेना, वो एक समय घटित होगा। एक गोत्र का जो है वो सातवें नरक में लेना, सम्यक्तो के अभिमान। अब अजगन्य अनुभाग बंध के तीन भंग हैं। कौन कौन से? हाँ चार, मैं नहीं सुन। हाँ हाँ अभी हमने पढ़ा है, देखो अभी 35 पृष्ठ पर आए हम, अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य का बंध एक, जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल भी एक समय, और अजघन्य अनुभाग बंध के तीन भंग पड़ते हैं। कौन से तीन? शादी शांत, वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। ये पढ़ेंगे फिर विशेषात पढ़ेंगे। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार आयु कर्म का विचार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार ओगो के समान मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत और चक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, भव्यों में अनादि अनंत भंग नहीं है। अब इसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे एक एक लेके। चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है। मौनी का कहाँ होता है? नवे के अंत में, और बाकी तीन का दसवें के अंत में, तथा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंधक सातवें पृथ्वी में सम्यक्त के अभिमुख जीव के बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में होता है। इसलिए इन पांच कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग बंध के तीन भंग है, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादी शांत। सादी शांत अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। खुलासा इस प्रकार है, किसी एक जीव ने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया और उतरकर पुनः अंतर्मूर्त काल के भीतर वह क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके उक्त कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध करता है, तब उसके उक्त चार कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है। और यदि कोई अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में उपशम श्रेणी पर आरोहण कर उपशांत मोह हो गिरता है तथा अंत में क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर मुक्ति लाभ करता है, तब उसके उक्त कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है। ये बात ख्याल में आई? इसमें चार घाती और गोत्र कर्म ले लिया, वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव के होता है। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं? गोत्र में तो हमने किसको लिया? जघन्य अनुभाग बंद में सातवें नरक का नार्क लिया, और कौन से उत्तर प्रकृति लिया है वहां पर, नीच गोत्र का जघन्य लिया है ना। अब वेदनी और नाम के लिए क्या लिखा है, जघन्य अनुभाग बंद परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले लिए। सर्व विशुद्धि होते हैं तो उसमें से प्रशस्त प्रकृति का जघन्य होता है, अति संघर्ष वाला लिया तो प्रशस्ति उसका तो उत्कृष्ट हो, ये उत्कृष्ट की बात है, हमें जघन्य देखने दोने की, तो बीच वाले हो गए इसलिए मध्यम परिणाम वाले लिए। उसका जघन्य लेना है तो तब नहीं ले सकते, असाता का जघन्य से साता का जघन्य अनंत गुणा है। तो उसकी विशुद्धि की ओर बढ़ेगा वो, असाता में से जब साता में एंटर करेगा मध्यम, वो परिवर्तमान मध्यम पर मध्यम ही है वो भी। उनको कहना है असाता में से जब साता में बांधना शुरू करेगा तब वो पॉइंट लेना क्या, कब लेना नहीं, स्थान वो नहीं बदलेगा परंतु उसके परिणामों में कुछ विशुद्धि होने लगी ना, असाता से साता में आने वाले की विशुद्धि बढ़ रही है, मध्यम परिणाम वाला लेना, इसलिए मध्यम ले जाओ उसका।
मध्यम परिणाम में क्या असाता से साता
जब होता है तब उसके परिणाम विशुद्धि की ओर जा रहे हैं, असाता से किस साता में जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है, परिणाम विशुद्धि की तरफ है। तो वही तो करेगा, मध्यम परिणाम वाले ही तो करेंगे, तीव्र वाले कैसे करेंगे, मध्यम परिणाम वाले ही साता से असाता असाता से साता वो असाता से साता होंगे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, वेदिनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंद परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले जीव के होते हैं, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। यानी जैसे हमने देखा था ना, वो तो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम लगातार, हाँ दोस्त कोई भी उत्कृष्ट परिणाम, और यहाँ कैसे है मध्यम परिणाम है, इसलिए चार समय लिए उसके। इनके अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव एक समय तक अजघन्य अनुभाग बंद करके जघन्य अनुभाग बंद करने लगता है, उसके इनके अजघन्य अनुभाग बंद का एक समय काल ही उपलब्ध होता है, और इनके अजघन्य अनुभाग बंद का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, कारण की है कि इन दोनों कर्मों का जघन्य अनुभाग बंद सूक्ष्म एकेंद्रियों में नहीं होता, उनके निरंतर अजघन्य अनुभाग बंद होता रहता है, और उनकी उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण करी है, ये तो हमने देखा था ना, ये सूक्ष्म एकेंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति। आयु अभी आएगी ना बात, अभी अपने उत्तर प्रकृतियों में हम उसके डिटेल में जाएंगे, अभी तो मूल प्रकृतियों की बात करेंगे। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंद के जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल चार समय का, तथा अजघन्य अनुभाग बंद के जघन्य काल एक समय का खुलासा नाम और गोत्र कर्म के समान है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, नाम गोत्र कहा, उसमें तो वेदनी और गोत्र इकट्ठा लिया था। वेदनी और नाम का लिया था, और यहाँ नाम और गोत्र के लिए। नहीं, परंतु आयु का अलग से बताना था ना। स्वामित्व निकाला जगन्य का, पेज नंबर ओग में देखना है ना, 18 आयु कर्म के लिए हमने देखा था ना, गोत्र को तो नीचे से देखो, वेदनी और नाम इकट्ठा लिया है तो मध्यम परिमाण वाला मिथ्या दृष्टि लिया है, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि लिया, दोनों को लिया। और नाम के लिए गोत्र के लिए वही सातवें नरक वाला लिया। और यहाँ कौन सी मार्गणा चल रही है, अभी जगह ओग में ही बात चल रही है ना। हाँ देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पढ़ेंगे विशेषार्थ की बात पढ़ रहे थे 35 पेज पर। वेदनी और नाम की बात हमने ऊपर पढ़ी थी पहली लाइन में, जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट चार समय। अब यहाँ उसका कारण यहाँ बताया था, वेदनी नाम का जगन्य अनुभाग किसके होता है तो परिवर्तमान मध्यम परिवाले के परिणाम वाले, इसलिए उसका एक समय से लेकर चार समय होता है। और वो अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय और समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव एक समय तक अजगन्य अनुभाग बंद करके अजगन्य अनुभाग बंद करने लगता, जगन्य अनुभाग अजगन्य करके जगन्य करने लगता है, परिवर्तमान वाली बात है ना, इसलिए उसके इसके अजगन्य अनुभाग बंद का एक समय काल उपलब्ध होता है। और अजगन्य का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण, उसका कारण बताया, क्योंकि सूक्ष्म एक इंद्रियों में जगन्य बंधन नहीं होगा और जगन्य ही लगाता होगा। हाँ, बादर एक इंद्रियों में होता है उसे। अब नीचे से छठी लाइन पढ़ रहे, आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध के जगन्य का दो लाइन देखो, इन दोनों कर्मों का है ना, वेदनी और नाम का, जगन्य अनुभाग बंध सूक्ष्म एक इंद्रिय में नहीं होता, उनके निरंतर अजगन्य अनुभाग बंध होता रहता है। और उनकी है ना सूक्ष्म एक इंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण करिए।
हाँ,
अब वो किसका कर रहा है उसके है ना, अजगन्य की बात कर रहे हैं ना, जगन्य का उत्कृष्ट काल चार समय लिया, अजगन्य का अनुभाग बंद एक समय वाला है। क्योंकि अजगन्य करके जगन्य करने लगता है इसके लिए ना, इसलिए अजगन्य का एक समय लिया हूँ। किसका वेदनीय की बात निकालो, स्वामित्व निकालो, अभी हमने पढ़ा था वेदिनी नाम की बात 18 पेज पर, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि लिया। अभी मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि को भी लिया है
तो वो पंचेंद्रिय में होगा ना।
हाँ, परंतु बादर केंद्रीय में भी होगा ना। हाँ,
जो स्वप्न दृष्टि को जगन्य अनुभाग बंद होता है उतना ही अनुभाग या जगन्य अनुभाग बादर केंद्रीय में भी होता
है।
ये अभी हमने जो पढ़ा था ऊपर देखो 35 पेज पर पहली लाइन, वेदिनी नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, बराबर न, लगातार उत्कृष्ट काल चार समय बताए, अजगन्य काल जगन्य काल एक समय बताया, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण क्यों कहा, क्योंकि वो सूक्ष्म में गए। सूक्ष्म में लगातार क्या किया उसने, अजगन्य किया। बादर में होता है ना वो तो जगन्य हो जाता है। अभी आयु कर्म का पढ़े नीचे से छठी लाइन, आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध के जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय का। देखो जगन्य में एक समय से चार समय लिए, और जब हम उत्कृष्ट बंध की बात करते तो एक समय या दो समय लिए। अभी किसका क्या वो भूल जाओ, यानी चार घाती के में तो हमने एक समय दो समय लिए, और यहाँ एक समय से चार समय। आपको शायद वो यवम मध्य की प्ररूपना याद होगी, तो इसमें क्या देखते थे हम, ये लगातार परिणाम सेम लेने हैं उसकी बात। तो बीच में आठ समय लिए थे, नीचे की ओर चार समय लिए और ऊपर चार, तीन और दो समय लिए। उत्कृष्ट परिणाम लगातार दो समय तक रह सकते हैं, बीच वाले ऐसे कोई तो लगातार आठ समय तक रह सकते हैं, और जघन्य की ओर अगर देखें तो लगातार चार समय। इसलिए जघन्य में हर बार वो चार समय लिए, उत्कृष्ट में हम दो समय लेते। उत्कृष्ट में भी कौन से, वो उत्कृष्ट संकेश वाला वो वाली चार घाती कर्मों का लेना। एक क्षपक जहाँ एक समय में बंध बदलता है उसकी बात नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ पर उसी को ले लिया। पेज अपना 35 चल रहा था तो चार समय हमने देखा, तथा अजगन्य मिला नीचे से पांचवी लाइन, आयु के अजगन्य अनुभाग बंध के जगन्य काल एक समय का खुलासा नाम और गोत्र कर्म के समान है। ये वेदनीय और नाम चाहिए ना, नाम और वेदनीय। गोत्र के बदले वेदनीय कर्म, अभी अभी हमने वेदिनी और नाम कर्म की बात देखी थी। क्योंकि वो जगन्य वाली वो सूक्ष्म वाली उसने आयु का बंध किया ही नहीं, ऐसा लेना उसे। आयु कर्म का निरंतर अंतर्मूर्त काल तक बंध होता है, इसलिए इसके अजगन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। वहाँ तो वेदिनी और नाम में उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक लिया था, वो तो लगातार बंद होता है, आयु का तो लगातार नहीं होता। गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंद, सातवीं पृथ्वी के नारकी के सम्यक्त के अभिमुख होने पर, अंतिम अनुभाग बंद में अवस्थित होने पर होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अभी हमें सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ट का कहा लिया था, कि यहीं पर लिया। अभी पहले सातवीं में कहीं बात आई थी ना, उत्कृष्ट के प्रकरण में कि नहीं आया था, जगन्य के प्रकरण में आया। तो ये लास्ट है, इसलिए इसके जगन्य अनुभाग बंद का जगन्य उत्कृष्ट काल एक समय कहाँ है, इसके यानी गोत्र के ना अजगन्य अनुभाग बंद का काल जिस प्रकार चार घाती कर्मों का घटित करके बतलाए हैं, उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। हाँ, अनादि अनंत, अनादि शांत और साधि शांत। यहाँ ओग के समान मत्य ज्ञानी आदि छह अन्य मार्गणाओं का निर्देश किया है, सो इनमें भव्य मार्गणा के सिवा शेष मार्गणाओं में स्वामित्व की अपेक्षा कुछ भेद रहने पर भी काल प्ररूपणा ओग के समान अविकल बन जाती है, इसलिए इनमें काल का निर्देश ओग के समान कहा है। मार्गणाओं में स्वामित्व अलग अलग बताया है, कौन से 35 पेज पर, पहले पैराग्राफ के लास्ट में, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, भव्य और मिथ्या दृष्टि की बात बताई थी और उनमें जघन्य बंद की बात उठाई थी। अब कल उसको देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।